समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
ये सर्द मौसम की चाय, कोहरे का नजारा, चाय के दो कप और इंतजार तुम्हारा। तो अब इंतजार किस बात की, सर्द मौसम ने दस्तक दे दी है और हम भी हाजिर हैं लेकर आपका अपना प्रोग्राम आज सवेरे। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। हर दिन की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और शगुन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
गुड मॉर्निंग जया, गुड डे एवरीबॉडी, नमस्कार ऑल आवर लिसनर्स, अ वेरी वार्म वेलकम एंड वेलकम with a warm welcome here, the warm being the operative word here, because yes, it is getting really cold nowadays, I should say that. Please get ready, find your winter clothes, warm clothes, you should dress warmly, listeners. I would like to start on that note. And yes, this is our daily news magazine program Aaj Savere, and it's 7:31 in the morning, and we'll give you the latest national and also international news, Metro City updates and some historical information which is related to today. And I was actually in the morning, I was reading a quote: each morning we are born again, what we do today is what matters most, Jaya. This is by Lord Buddha himself. So we are starting on a very positive note, a very fresh start to the morning. Today it's 10th of November. Let's begin with the headlines.
बिल्कुल, लेकिन उससे पहले श्रोताओं को बता दूं कि आज बहुत कुछ है हमारे पास, तो अंत तक बने रहिएगा। अब नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर।
Yes.
बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। इस चरण में 20 जिलों में फैले 122 निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होगा। 3,70,00,000 से अधिक मतदाता, 136 महिलाओं सहित 1,302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे समाप्त होगा। सुरक्षा कारणों से 7 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इस चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को हुए चुनाव में रिकॉर्ड लगभग 65% मतदान हुआ। मतगणना 14 नवंबर को होगी।
President Draupadi Murmu is scheduled to address the Angolan parliamentarians at their National Assembly in Luanda today. The president had yesterday said that as the world's largest democracy, India hopes to enhance parliamentary cooperation with Angola. She had stressed upon the need for the democratic institutions to learn from each other's experience through mutual exchanges. She had further added that India is ready to share its parliamentary best practices. President Murmu will also interact with the members of Indian community in Angola. The Indian community in Angola numbers around 8,000, mainly consisting of business persons, professionals and workers in the establishments of Indian owners. It is estimated that around 200 Indian companies operate in Angola, particularly in retail, hospitality, agriculture, plastics, metal, pharmaceuticals, diamonds and amp, automobile sectors. President Murmu had yesterday held wide-ranging discussions with Angolan President João Lourenço. We have a report.
The two leaders agreed to work together to deepen bilateral cooperation. They identified areas such as energy, infrastructure, defense, health, agriculture, and digital technologies for closer partnership. MOUs were exchanged to strengthen cooperation in fisheries, aquaculture, marine resources, and consular matters. President Murmu welcomed Angola's decision to join the International Big Cat Alliance and the Global Biofuels Alliance. The Angolan president praised India's expertise in health, aerospace, and defense systems. He said that working with India in these areas would be especially beneficial for Angola. Manish Shiva, Akashwani News, Angola.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से भूटान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 1020 मेगावाट की पुनात्सो छांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। भारत और भूटान ने इस परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। भूटान और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी वैश्विक शांति प्रार्थना समारोह में हिस्सा लेंगे और थिम्पू के ताशी छोजुंग में पवित्र अवशेषों की पूजा अर्चना करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने और मजबूती प्रदान करने के उपायों पर विचार करने तथा आपसी हितों के क्षेत्रीय और व्यापक मुद्दों पर विचार के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करेगी।
In a major social initiative, the Assam Cabinet has approved the Assam Prohibition of Polygamy Bill 2025, aimed at outlawing and eliminating the practice of polygamy across the state, except in 6 scheduled areas. The bill prohibits any individual from marrying if they already have a living spouse, are not legally separated, or if their earlier marriage has not been dissolved by a decree of divorce. It also provides for compensation to women affected by polygamous marriages, acknowledging the immense hardship such victims often endure.
अब बात खेलों की। निशानेबाजी में भारत के अनीश भानवाला ने मिस्र के काहिरा में चल रही ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। अनीश ने फाइनल में 28 निशाने लगाए। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ अनीश ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज बन गए हैं।
Now let's tell you about FIDE Chess. Well, Indian Grandmaster Karthik Venkataraman advanced to the fourth round of FIDE Chess World Cup 2025 in Panaji, Goa. He reached in the fourth round after defeating Romanian Grandmaster Bogdan Daniel Deg in a tense tiebreaker. With this, Karthik joins 4 other Indian players, Arjun Erigesi, R. Pragyananda, P. Harikrishna and World Junior Champion V. Pranav in the fourth round. Grandmasters Vidit Gujarati and S.L. Narayanan were both eliminated in their respective tie-break encounters. Gujarati lost to America's Sam Shankland, while Narayanan went down to China's Yang Yu in the first set of rapid games. Out of 206 Indian participants who began the competition, only 5 now remain in the contention for the title. The top 3 finishers in the World Cup will qualify for the prestigious Candidates Tournament.
और अब रुक करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल। शुरुआत चेन्नई से।
यस जया, आई एम बिगिनिंग विद चेन्नई। इंडियाज फर्स्ट डीप सी मरीन माइक्रोबियल रिपोजिटरी विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व एंड स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एक्सट्रीम मरीन एनवायरमेंट्स। द डायरेक्टर of National Institute of Ocean Technology, Balaji Ramakrishnan, said that the facility will be set up at Nellore under the Deep Ocean Mission and will serve as a national reference center for isolating, also culturing and characterizing microbes for industrial, biomedical and environmental applications, so isolating, also culturing and characterizing microbes. The repository will have all the critical equipment for study and store microbes isolated from different deep sea environments, such as the water column on and below the seabed and sea mounds. And here they will be documented, cultured, as I told you, and characterized for a range of applications. This includes healthcare there. I have other update from Chennai. The Metropolitan Transport Corporation was honored with the National Award for City with the Best Public Transport System at the UMI conference. Union Minister for Housing and Urban Affairs Manohar Lal presented the award at the valedictory function at the 18th Urban Mobility India Conference in Delhi, MTC. The Metropolitan Transport Corporation Chennai was selected for this national recognition in acknowledgement of its initiatives, such as covering 660 routes across Chennai and its suburban areas, launch of free bus travel for women and dedicated school bus service scheme, among others. And one more update. This is about a mega camp for the pensioners of defense forces, defense civilian establishments and other central government offices for the renewal of their digital life certificates. It will be organized at Air Force Station Tambaram tomorrow. Also, the camp will be held jointly by the Indian Air Force and the Defence Accounts Department, Chennai, as part of the nationwide Digital Life Certificate Campaign 4.0. And over to you, Jaya, now for Delhi's updates.
हाँ, अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का. राजधानी में नागरिकों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए दिल्ली सरकार अगले महीने से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या में बढ़ोतरी करेगी. वर्तमान में दिल्ली में 168 आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं. अगले महीने से 187 और आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जाएंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में सुलभ, किफायती और सर्वांगीण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए शहर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य दिल्ली वासियों को उनके घर के निकट प्राथमिक और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है. दिल्ली से एक और खबर है हमारे पास कि दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है. निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्राप्त नामांकनों की छंटनी बुधवार को की जाएगी और प्रत्याशियों द्वारा अपने नाम 15 नवंबर तक वापस लिए जा सकेंगे. निगम के जिन वार्डों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका बी, ढिचाऊ कलां, नारायण, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर वार्ड शामिल हैं. मतदान इस महीने की 30 तारीख को होगा और मतों की गणना 3 दिसंबर को की जाएगी. इस बीच इस उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है. पार्टी ने ग्रेटर कैलाश से इश्ना गुप्ता, चांदनी चौक से हर्ष शर्मा और दक्षिणपुरी से रामस्वरूप कनौजिया के नामों की घोषणा की है. वहीं विनोद नगर से गीता रावत, अशोक विहार से सीमा विकास गोयल, मुंडका से अनिल लकड़ा और नारायणा से राजन अरोड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. इसके अतिरिक्त संगम विहार ए से अर्जुन शर्मा, शालीमार बाग बी से बबीता अहलावत, द्वारका बी से राजबाला सहरावत और ढिचाऊ कलां से नीतू केशव चौहान चुनावी मैदान में है. आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज द्वारा यह सूची जारी की गई है. वहीं भाजपा ने दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशियों को लेकर टिप्पणी की है. दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने ढिचाऊ कला सीट से केशव चौहान नाम की घोषणा की है, जबकि यह सीट महिला आरक्षित है. वहीं भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि विनोद नगर वार्ड से पूर्व पार्षद गीता रावत को फिर से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं.
Now let's focus on Bengaluru, and this is about Indian Horticultural Congress that concluded in Bengaluru yesterday. And highlighted the role of science, innovation and policy. We'll talk about science more in our history section in just a few moments from now. And in this transformed India's horticultural landscape to meet the challenges of climate change, nutritional security and global competition, the 11th edition of the four-day Congress revolved around the central theme of horticulture for inclusive, equitable and sustainable growth. So the scientists, policymakers, entrepreneurs, FPO representatives, students and progressive farmers aligned for a resilient horticulture sector. And over 1,200 participants from Indian states and 30 overseas delegates from 20 countries, they participated in the deliberations.
अब चलते हैं भारत की औद्योगिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र की ओर. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने प्रस्तावित एकीकृत अंडरपास परियोजना के लिए एकीकृत भूमिगत सड़क नेटवर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह मौजूदा सड़क नेटवर्क और तेजी से बढ़ते मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ मुंबई के लिए यात्रा का तीसरा साधन बन जाएगा. इस दूरदर्शी पहल के तहत मुंबई कोस्टल रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित हाई स्पीड रेल स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने के लिए एक भूमिगत गलियारे की परिकल्पना की गई है. यह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एसवी रोड को जोड़ेगा और यातायात की भीड़ भाड़ को काफी हद तक कम करेगा.
Yes, now let's focus on Hyderabad, where during the bipole to be held in Jubilee Hills Assembly constituency tomorrow, drones will be used for surveillance during the bipole. District Election Officer R.V. Karnan informed that drones will be used at nearly 130 locations covering 407 polling stations for surveillance from 7 a.m. to the end of the polling. He said that this will ensure a smooth and secure polling process. Addressing the media conference in Hyderabad along with senior police officials, Mr. Karnan said that the drones will be used to monitor the polling stations and also the surrounding areas, providing real-time data to the authorities to ensure that the polling should be done in a smoother manner. The authorities have identified 226 critical polling stations in 65 locations and adequate numbers of police personnel. Police personnel, they have been deployed here to ensure peaceful voting.
तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और शगुन के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं कि मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज हल्की धुंध छाई रह सकती है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। मुंबई में आज आसमान साफ रहने की संभावना है। गरज के साथ छिटपुट बारिश भी हो सकती है। शहर का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस बीच मुंबई में कल मौसम का पहला सबसे कम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। मुंबई की तरह सिटी ऑफ जॉय यानी कि कोलकाता में भी दो दिनों से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। उत्तर से ठंडी हवाएं राज्य में प्रवेश करने लगी हैं। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने शुष्क मौसम रहने की संभावना व्यक्त की है। रात के तापमान में भी गिरावट आएगी। हालांकि शहर में आज आसमान साफ रहेगा। शहर का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
यस जया, बिगिनिंग विद चेन्नई, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन एंड द मिनिमम टेम्परेचर वाज 25 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज देयर। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर वाज 17 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट हैदराबाद, अगेन partly cloudy sky with haze and the minimum temperature it was around 16 degrees celsius and maximum temperature it will be around 31 degrees celsius there, Jaya, Chennai, Bengaluru, Hyderabad. And now listeners, we'll tell you why this day is special. As I was telling you about science, so today World Science Day for Peace and Development is being observed globally. This day it highlights the significant role of science in society, and there is a need to engage the wider public in debates on emerging scientific issues. So the theme, listeners, theme for this year is Trust, Transformation and Tomorrow, the Science We Need for 2050. And this rightly emphasizes the critical role of science in building trust, also driving transformation and shaping a more sustainable and peaceful future, which is the need of the hour. Also, the first World Science Day for Peace and Development, this was celebrated worldwide on 10th of November and in the year 2002 under UNESCO auspices.
बिल्कुल, यह दिवस वैज्ञानिकों और निर्णयकर्ताओं और आम जनता के बीच एक सहयोग को प्रोत्साहित करता है ताकि वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजा जा सके और वैज्ञानिक ज्ञान भी सभी लोगों को आसानी से मिल सके।
वेल, साइंस इज रेलिवेंट इन आवर डेली लाइव्स एज वेल, सो इट अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस as well. World Science Day for Peace and Development. Also today, let's talk about World Immunization Day. It is being observed today and it aims to raise awareness about the vital role that vaccines play, of course, in preventing infectious diseases and protecting public health.
बिल्कुल, इसका उद्देश्य ही है कि टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बैक्टीरियाज या वायरस बढ़ रहे हैं, लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, और ख़ासकर जब बच्चे इम्यून नहीं होते हैं और उस समय उन पर वो अटैक करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को समय पर उनका टीकाकरण किया जाए।
एंड ऑल्सो दिस helps this the cost efficient intervention and the most effective method immunization I should say for controlling and eradicating diseases and saving millions of lives globally each year. And this is a reminder, please get vaccinated. And as you were telling about children, they should be vaccinated and this must be taken very, very seriously, listeners. And now let's take our listeners back, Jaya, in time. In 1444, Turkish forces defeated the Hungarians in the Battle of Varna.
बिल्कुल 1885 की बात करते हैं हम, जहां गोटलिएब डिमलेर ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेस की थी.
And let's take you again a little back from there. In 1659, Chhatrapati Shivaji Maharaj killed Afzal Khan, the general of the Bijapur Sultanate, near the Pratapgarh fort. A significant event this was in Maratha history. And in 1698, the British East India Company acquired the zamindari rights over three villages, which were Kalikata, Gobindapur, and Sutanuti. From the governor of Bengal later, and later listeners, it eventually led to the development of modern day Kolkata. Now, in 1775, the United States Marine Corps was founded by the Continental Congress.
और अगर 1989 की बात करें तो जर्मनी में बर्लिन की दीवार गिराने का कार्य आज ही से शुरू हुआ था.
And if you are talking about Germany, let me also tell our listeners that in 1928, the first installment of All Quiet on the Western Front, Erich Maria Remarque's acclaimed novel of World War I, it appeared in the German magazine Vossische Zeitung.
आज ही के दिन 1997 में चीन रूस घोषणा पत्र से दोनों देशों के बीच सीमांकन विवाद समाप्त हुआ था.
And listeners, you must remember a pioneering TV show, Sesame Street. It featured a cast of puppet characters that taught generations of young children the alphabet and how to count, made its broadcast debut in the year 1969.
और वर्ष 2000 में आज के दिन गंगा मेकांग संपर्क परियोजना का कार्य शुरू हुआ था. 2007 में एक ब्रिटिश अपीलीय कोर्ट ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय डॉक्टरों के साथ यूरोपीय संघ के डॉक्टरों के समान बर्ताव करने का आदेश दिया था, क्योंकि उस समय जिस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होता था तो यूरोपीय संघ और भारतीय डॉक्टरों के साथ समान व्यवहार करने की बात की गई थी. इसके लिए ब्रिटिश में अपीलीय कोर्ट किया.
And in 2001, after 15 years of negotiations, China's membership in the World Trade Organization, it was approved.
Yeah. और अगर हम 2008 की बात करें तो भारत ने आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी और नासा ने मंगल ग्रह के लिए अपने फिनिक्स मिशन के समापन की घोषणा की थी. और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन. हम याद कर रहे हैं भारत की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूलने वाले अमर शहीदों में से एक, कनाईलाल दत्त को. आज उनकी पुण्यतिथि है. बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में कनाईलाल ने आगे बढ़कर भाग लिया. वे इस आंदोलन के नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के प्रमुख सहयोगी थे. अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें कैद किया और फांसी की सजा सुनाई. कहा जाता है कि जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी तो फैसले में लिखा गया था कि उन्हें इसमें अपील करने की इजाजत नहीं होगी. महज 20 वर्ष की आयु में शहीद हो जाने वाले कनाईलाल दत्त की शहादत को भारत में कभी भुलाया नहीं जा सकेगा.
And we salute the brave heart. Listeners, today we are also remembering a singer-songwriter and producer, Gerald Edward Levitt. He performed with his brother Sean Levitt initially, and then he was also a member of a supergroup comprising of other famous singers. One of them was Johnny Gill, and actually he was the son of Eddie Levitt, lead singer of the R&B soul vocal group, and he used to author novels as well, and he released a whopping 9 solo albums, 6 as a member of Levitt. This was by his surname, and he was also credited with the discovery of R&B groups. One of them is Men at Large. I was telling you about Gerald Edward Levitt.
आज पुण्यतिथि है राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विजय दांदेथा की. उन्हें बिजी के नाम से भी जाना जाता है. विजयनाथ को साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार जैसे विभिन्न अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. इनकी राजस्थानी भाषा में 14 खंडों में प्रकाशित बातारी फुलवारी के 10वें खंड को भारतीय राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया, जो राजस्थानी कृति पर पहला पुरस्कार है. इनकी लिखी कहानियों पर 2 दर्जन से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें मणि कौल द्वारा निर्देशित दुविधा पर अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं. इसके अलावा वर्ष 1986 में उनकी कथा पर चर्चित फिल्म, निर्माता निर्देशक प्रकाश झा द्वारा निर्देशित फिल्म परिणीति काफी प्रभावशाली रही। दुविधा पर आधारित हिंदी फिल्म पहेली में अभिनेता शाहरुख खान और रानी मुखर्जी मुख्य भूमिकाओं में थे। यह उनकी किसी रचना पर बनी अंतिम फिल्म है
जी।
तो सुनते हैं इस फिल्म से एक गीत।
खाली है तेरे बिना दोनों आँखियाँ, तुम गए कहाँ, आँखियों के आलों में तेरे बिना रात भर जलती है बातियाँ यहाँ।
Wow, such a beautiful creation. And well, the noted writer of Rajasthani literature. So he has more than 800 short stories to his credit. They have been translated into English and even other languages.
हाँ, विजय दान देथा ने कविताएं भी लिखी, उपन्यास भी लिखे
जी।
रंगकर्मी हबीब तनवीर ने विजय दान देथा की लोकप्रिय कहानी चरणदास चोर को नाटक का स्वरूप प्रदान किया था और श्याम बेनेगल ने इस पर एक फिल्म बनाई थी।
एंड यस, एज यू आर टेलिंग आवर लिसनर्स दैट मेनी ऑफ द स्टोरीज एंड नॉवेल्स दे हैव बीन अडैप्टेड फॉर स्टेज एंड स्क्रीन एंड अ 14 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फुलवारी दैट ड्रॉज ऑन फोकलोर इन द स्पोकन डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान एंड दिस इज वन ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स। Listeners, today we are also remembering Marilyn Keith Bergman. So today it's her birth anniversary, and she has been a songwriter with so many creations to her credit. And she actually wrote music with Alan Bergman, and they wrote music and lyrics for numerous celebrated television, film, and stage productions. So they enjoyed a successful career and honored with 4 Emmys, 3 Oscars, 2 Grammys. This creation, one of her creations, this is The Windmills of Your M.
Round, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning reel.
हम याद कर रहे हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। इनका जन्म 10 नवंबर 1848 को कोलकाता में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान रहा है। 1905 में बंगाल प्रांत के विभाजन का विरोध करने वाले सुरेंद्रनाथ सबसे प्रमुख नेता थे। समूचे भारत और बंगाल में आंदोलन और व्यापक जन समर्थन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी आगे रहे। इस वजह से ब्रिटिश शासन को मजबूर होकर 1912 में विभाजन के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा था। उन्हें 1905 का बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है। आज ही जयंती है दत्तोपंत ठेगंडी की, जिनका समाज सुधार में विशेष योगदान रहा है। 1920 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में जन्मे दत्तोपंत ने भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच जैसे कई प्रभावशाली संगठनों की स्थापना की। युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना निर्माण करने का कार्य भी दत्तोपंत ने किया। दत्तोपंत ने 26 हिंदी, 12 अंग्रेजी और 2 मराठी पुस्तकों का लेखन किया है। उनकी ये पुस्तकें उनके राष्ट्र कार्य की मनोगाथा है।
Listeners, we are also remembering Ellen Jane Froman, the actress and singer. And during her 30-year career, she performed on stage, radio and television, a versatile performer. And this song, I really love the name we have chosen for you. It's a good day.
A good day from morning till night. Yes, it's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose.
आज जन्मदिन है हिंदी फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा का। फिल्मों में भयानक आंखें, डरावनी हंसी और कठोर आवाज के साथ दर्शकों की रूह कपाने वाले अभिनेता आशुतोष राणा को हिंदी सिनेमा के सबसे खतरनाक खलनायकों में गिना जाता है। सुनते हैं संघर्ष फिल्म से उनका ये संवाद।
मैं इंसान नहीं हूँ, ये जीवन मरण तुझ जैसे तुच्छ प्राणियों की जिंदगी का हिस्सा है। वो देख चंद्रमा आगे बढ़ रहा है, जैसे ही सूरज और पृथ्वी के बीच में पर्दा डालेगा, मैं मेरे ऊपर से ये मौत का साया हमेशा के लिए हट जाएगा। उस यमराज को भी मुझसे आज हारना होगा।
Well, we can sense that in his tone, and he's known, we know him for his portrayal of negative roles.
स्क्रीन पर डराने वाले इस कलाकार का असल जीवन बहुत ही शांत, विनम्र और आध्यात्मिक है। सुनते हैं शिव तांडव उनकी आवाज।
गले में जिनके सज रहा है हार, विश्व भुजंग का डमट 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 डमरू कह रहा।
श्रोताओं, समय हो गया आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और शगुन को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। नमस्कार, नमस्कार।